ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवों से रोशन जमी आसमां, जो किसी को नजर तू ना आता, यहाँ तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां, धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं परचे वहां, सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझे ना लड़के यहाँ, तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते इंसान तू बदनाम है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोजख को लाने की जहमत क्यों की, तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोजख को लाने की जहमत क्यों की, खेल कैसा गजब था गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जो दिया, लेना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या काम है, क्या नाम है, हाँ क्या काम है, ऐ खुदा खुदा।
शांति, वेरी गुड इवनिंग। शांति शांति। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। कल हमने पिछले 3 दिन और विशेष कल हमने बहुत सारी, पहले तो हमने अपने बारे में जाना था शुरू के 2 दिन, और फिर उसके बाद हमने कल हमने परमात्मा के बारे में, जो बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है, उनके बारे में जाना। तो हमने कल बहुत कुछ जाना, उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी मान्यताएं हैं, फिर परमात्मा को जानने की कसौटी क्या है, किस कसौटी पर हम परख सकते हैं कि हाँ इन्हें ही परमात्मा कह सकते हैं। एक छोटा सा रिकैप स्लाइड के थ्रू भी देखते हैं कि हमने देखा कि बहुत सारे ईश्वर, बहुत सारे गॉड्स का प्रचलन है भारत के अंदर। कहीं किसी दिशा में किसी की, किसी दिशा में किसी की पूजा होती है। फिर हमने अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स भी देखे, फिर हमने वो कसौटी देखी, वो पैरामीटर देखा, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये परमात्मा है कि नहीं, किसे परमात्मा कहेंगे। और इस बीच में हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एलिफेंट वाली स्टोरी भी समझी थी ना, जाननी थी कि कैसे हम जब किसी भी चीज के बारे में अपने अनुभव से कहते हैं तो हमें लगता है यही सत्य है ना, यही सही है, परंतु फिर भी सत्य तो कुछ और ही था। जैसे उस स्टोरी में भी हमने देखा, सत्य तो कुछ और ही था, कोई भी व्यक्ति रॉन्ग नहीं था, परंतु हाथी तो फिर कुछ और ही था, है ना। फिर हमने वो कसौटियां भी देखी, फिर हम वापस अपने बिलीफ सिस्टम्स पे गए। तो आज हम वहीं से ही शुरू करते हैं। हमने 5 पैरामीटर्स देखे थे। कौन कौन से वो 5 पैरामीटर्स थे, फटाफट कौन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, पैक करेंगे एक स्लाइड। यस, थैंक यू। कौन कौन से वो 5 पैरामीटर्स थे, किसी का जवाब नहीं आया अब तक चैट बॉक्स में। एक तो आंसर भी दिख गया था सभी को। पैरामीटर्स कौन कौन से थे, 5 पैरामीटर्स थे ना, जिनके आधार पर हम ये देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि परमात्मा कौन है। ऑल रिलीजन्स शुड एक्सपेक्ट एक्सेप्ट, निरंजना जी कहते हैं, हाईएस्ट है, हु नोज एवरीथिंग, सर्वोपरि। यस, है ना। तो हमने देखे थे 5 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर था परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसे सभी धर्मों की आत्माएं स्वीकार करे कि वो परमात्मा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म की आत्मा जब ये कह देना कि हाँ यही है, वही है, तो फिर उसे मानेंगे हम परमात्मा। दूसरा हमने देखा था परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिसका खुद कोई टीचर, खुद के कोई मदर फादर और खुद के कोई गुरु नहीं हो, उसे परमात्मा कहेंगे। तीसरा हमने देखा था, हम परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, जो सब कुछ जानने वाला हो। सब कुछ मतलब हमारे और आपके हृदय का हाल नहीं, हमारे और आपके दिल में क्या चल रहा है वो नहीं, परंतु इस संपूर्ण सृष्टि पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ दिस होल वर्ल्ड साइकिल, उसको जानने वाला, जो त्रिमूर्ति का भी रचयिता है, जो सर्वज्ञ है, उसे परमात्मा कहेंगे। परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वोपरि है, बियॉन्ड ऑल द साइकिल्स, बियॉन्ड द टाइम साइकिल, बियॉन्ड द साइकिल ऑफ कर्मा, कर्म और उसके प्रभाव, इस चक्र से भी वो परे है। उसको हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे पे उसका अच्छा फल आता है ना। हम हमारे लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कुछ अच्छा किया था जो आज रिटर्न मिल रहा है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कोई केस नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छा किया था ना इसलिए कुछ अच्छा मिल रहा है, या कुछ गलत किया था तो गलत मिल रहा है। वो कर्म के प्रभाव से, कर्म के चक्र से भी परे हैं। और वो, हमने देखा कि उनके मदर फादर ही नहीं है तो फिर वो जन्म और मृत्यु के चक्र में भी नहीं आते। और पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका पैरामीटर है, परमात्मा की महिमा भी कह सकते हैं, सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत है। परमात्मा सागर है, जिसकी महिमा में कहा गया है, सागर की स्याही बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, तो भी उसकी महिमा लिखी न जाए, ऐसी अपरम अपार महिमा है। अगर मुझे लगता है अभी जो भी भाई बहने हमारे साथ में है, अगर आपसे भी कहे ना कि परमात्मा की महिमा सुनाइए, तो बहुत लंबी लंबी हम सब परमात्मा की महिमा सुना सकते हैं। तो परमात्मा उसे कहेंगे। फिर जब हमने ये पांच पैरामीटर्स जान लिए थे, उसके बाद हमने ये देखा कि जो हमारी जो मान्यताएं थी, जो दूसरी 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 और हमने जो मान्यताएं कल देखी थी, फिर हमने हर एक मान्यता को चेक किया कि जो हम सोच रहे थे कि प्रकृति ही परमेश्वर है ना, तो हमने देखा कि प्रकृति परमेश्वर है, ये बात तो उन पांच पैरामीटर्स पर सेट नहीं होती है, सब धर्म की आत्मा इसे नहीं स्वीकार करेंगी। फिर हमने दूसरा व्यू देखा था कि आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है, आत्माएं तो कई प्रकार की होती है, कोई पुण्य आत्मा, कोई देव आत्मा, कोई धर्म आत्मा है ना, कोई प्रेत आत्मा, लेकिन परमात्मा तो एक ही होते हैं, तो ये मान्यता भी ठीक नहीं है। फिर तीसरी मान्यता हमने देखी है ना, बबल ऑफ सी के आत्मा बुदबुदा पानी में जाकर के मिल जाता है ना, जैसे बुदबुदा पानी में जाके मिलता है, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा में जाके लीन हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। आत्मा का अपना अस्तित्व है, आत्मा एक शक्ति है, ऐसे ही परमात्मा का भी अपना अस्तित्व है, दोनों अविनाशी है और आत्मा परमात्मा का वंश है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम फादर, वी आर नॉट हिज पार्ट्स। फिर हमने देखा था कि ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म माना जो परम धाम है, जो परमात्मा के रहने का स्थान है, तो ये भी एक मान्यता थी कि वो स्थान ही परमात्मा है। फिर हमने देखा कि वो स्थान परमात्मा कैसे हो सकता है, वो तो परमात्मा के रहने की जगह है, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग रेफरेंस बुक्स में, कहीं मोक्ष, कहीं ब्रह्म तत्व, कहीं सातवीं दुनिया, कहीं मुक्ति, कहीं निर्वाण, कहीं रूहानी दुनिया, इन नामों से उसे याद किया है। और उसी के लिए कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, इस दुनिया से पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर तुम ही हम सभी आत्माओं के स्वामी हो। तो पार ब्रह्म परमेश्वर, उसमें रहने वाला ईश्वर, उसके लिए कहा गया है। तो इस तरह से हमने सारी मान्यताएं देखी, और उसमें एक और सबसे प्रोमिनेंट हम सभी की जो मान्यता, बहुत अधिक समय हम सब जिस मान्यता के साथ चले हैं, वो थी परमात्मा सर्वव्यापी है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो कल का सेशन सभी ने अटेंड किया था, तो उसके बाद क्या आंसर लिखा हमने, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या समझा था हमने, चैट बॉक्स में लिखेंगे सभी, क्या परमात्मा सर्वव्यापी है, यस और नो? Can we say that God is omnipresent in each and every particle, in the dust particles, in the dirty particles, in the mud, in the shallow waters, everywhere? परमात्मा को हम, ये हमने क्या समझा, हमने उसकी महिमा में समझा कि ये शायद उनकी महिमा है ना, लेकिन जब परमात्मा स्वयं अपना परिचय देने लगे तो उन्होंने कहा कि परमात्मा मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। अच्छा, हम कहते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, गाय कुत्ते बिल्ली सुअर सब में, अच्छा इनमें से कोई नाम अगर हम किसी इंसान को बोल दें तो कि तुम ये हो, अच्छा लगेगा? हम परमात्मा के लिए महिमा में कहते हैं ना, वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में है ना, कुत्ते बिल्ली गाय सुअर सब में है, अगर ये जितने भी नाम है ना क्रिएचर्स के, अगर ये हम किसी इंसान को बोल दे तो उसको अच्छा लगता है? हमें कोई बोले तो कि तुम ये हो तो अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो हमने क्या किया, हमने सोचा शायद हम उसकी महिमा कर रहे हैं, वी ट्राई टू ग्लोरिफाई हिज नेम, कि ये परमात्मा है ना, सब जगह उसी का ही, एक तरह से उसी की ही क्रिएटेड पृथ्वी है, तो हमने सोचा कि वो सभी तरफ है, हर चीज में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्रिएटर कभी हर चीज में नहीं हो सकता है, और अगर वो फिर सब जगह ही होता तो फिर उनको खुद ही ये कहना पड़ता क्या कि तो उस हमको फिर खुद ही उनको खुद ही ये गीता में कहना पड़ता क्या कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस सृष्टि पर आऊंगा, कहना पड़ रहा है, इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं है। तो आज तक कई भाई बहन हमारे ये भी सोचते हैं कि आज तक तो हमने रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स में ये पढ़ा था, दीदी ऐसे पढ़ा था, वैसे पढ़ा था। कल हमने एक बहुत अच्छी बात इस पे करी थी ना, किसका एग्जाम्पल लिया था कल अपन ने, किसी को याद है किसका एग्जाम्पल था वो कल? हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था ना कि कल, यस वेरी गुड, निरंजना जी को याद था, आरडी शर्मा जी का एग्जाम्पल था, है ना। जिस दिन आरडी शर्मा जी क्लास में खुद आते हैं वो क्या कहते हैं, नाउ क्लोज ऑल द बुक्स इवन इफ इट इज रिटन बाय मी, चाहे मैंने ही लिखी है वो सारी किताबें, लेकिन अब उन सबको बंद कर दो, अभी जो मैं कह रहा हूं ना वही सत्य है। तो ऐसे ही हमने आज तक जो भी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़े उसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं था, दे ऑल वर राइट एज पर देयर व्यूज, उनको लिखने वाले के अनुभव के आधार पर वो सभी मान्यताएं, वो सभी बातें सत्य थी। जैसे कि हमने कल एलिफेंट के केस में देखा था ना, हाथी के केस में, कि उन पांचों में से कोई भी रॉन्ग नहीं था, परंतु सत्य कुछ और भी था। ऐसे ही हमारी जितनी भी स्क्रिप्चर्स है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी होली बुक, है ना, रॉन्ग किसी में भी नहीं लिखा है, जो लिखा है लिखने वाले ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा। पर अब परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, नाउ ही सेज कि सत्य क्या है, क्योंकि उसी के लिए कहते हैं ना गॉड इज ट्रुथ, तो परमात्मा ही आकर के ट्रुथ बता सकते हैं ना। अगर हम में से कोई ट्रुथ बता सकता होता तो फिर ट्रुथ की बात ही नहीं रहती, फिर हमें पहले से ही पता होता, फिर हमें उनको इनवाइट करने की भी जरूरत नहीं होती। तो हमने अभी ये समझ लिया है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि परमात्मा हमें ये भी कहते वो किसी चीज में नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ, मैं यहाँ याद करूंगी ना तो मुझे भी फील कराएंगे कि वो मेरे साथ है। आप सब अपने अपने जगह, शायद पूरे भारत के अलग अलग कोने से भाई बहने अभी कनेक्टेड है ना, कोई यूट्यूब पर है, कोई कहीं है, सभी को अनुभव हो सकता है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, वो मेरे साथ में है, है ना, लेकिन वो किसी चीज में नहीं है। एक साथ वो लाखों करोड़ों को अनुभव करा सकते हैं कि वो, हाँ वो हमारे साथ में है, उनकी शक्ति हमें मिल सकती है, लेकिन वो किसी भौतिक वस्तु में हो ऐसा नहीं। और फिर ये भी लिखा है श्रीमद् भगवद गीता में कि मेरा धाम परम धाम है जहां सूर्य चांद तारों की रोशनी नहीं पहुंचती। इसका मतलब है इस दुनिया में तो नहीं रहते ना, परम धाम में वो रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने ये सभी अपनी मान्यताओं को कल क्लियर किया और फिर हम एक निष्कर्ष पर आते हैं कि आखिर भी फिर परमात्मा कौन है। चलिए हम परमात्मा को जाने, उनको अनुभव करें, उससे पहले हम सभी कुछ क्षणों के लिए पॉज लेते हैं। सभी जहां पर भी बैठे हम फिर से अपनी उस सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित होकर के बैठेंगे, है ना। इट्स जस्ट लाइक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। हम क्या करेंगे, जैसे हमें दो वायर्स को अगर कनेक्ट करना है ना, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के अगर दो वायर्स होते हाथ में और हमें इन्हें कनेक्ट करना होता तो हमको क्या करना पड़ता, दोनों ये तो एक ही है अभी, अगर दो अलग अलग होते और कनेक्ट करना होता तो क्या करते हैं। एनी आंसर? तारक विश्वास जी शायद कुछ कह रहे हैं कि ऊपर से कुछ हटाया जाता है उसका, ना अंदर से मेटलिक वायर को निकाला जाता है और उन मेटलिक वायर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं देन ओनली इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, है ना, तभी। लेकिन वो जब हम उनको ट्विस्ट तो करें, लेकिन प्लास्टिक वायर्स को ट्विस्ट करने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसके ऊपर का इंसुलेशन हमें रिमूव करना होगा, रबर को हटाना पड़ेगा, तभी वो करंट फ्लो होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ही अब देखिए जो परमात्मा है उसके पास तो हमने देखा ना, उसका जन्म ही नहीं हुआ है किसी माता से, तो उसके पास तो ऐसा शरीर होगा नहीं। अब वो कौन है वो भी हम जान लेंगे आज ही, है ना। लेकिन अगर माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, उनकी कोई माता नहीं है, इसका मतलब ऐसा फॉर्म तो नहीं है उनका हमारी तरह। और हमारा क्या है अभी, हम आत्मा है, लेकिन दिस बॉडी इज लाइक एन इंसुलेशन, इट्स लाइक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम जैसे ही सोल कॉन्शियस होते हैं, हम बैठते हैं साइलेंस में, याद करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, इट्स जस्ट लाइक लूजनिंग द इंसुलेशन। हम उस इंसुलेशन को, इस देह भान को, इस बॉडी कॉन्शियसनेस को हम जैसे लूज कर रहे हैं, मतलब ढीला छोड़ रहे हैं, हल्का कर रहे हैं अपने आप को, देह भान को छोड़ रहे हैं, सोल कॉन्शियस हो रहे हैं, तो अभी हम उस स्थिति में स्थित होंगे, ताकि क्योंकि आज हमें उनको जानना है, उनके साथ संबंध जोड़ना है, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी पर आने की कोशिश करें ना। तो अभी सब सीधा होकर के बैठेंगे, कुछ क्षणों के लिए अपने मन और बुद्धि को। चारों तरफ की सभी बातों से हल्का करें। स्वयं की ओर लेकर के आए। अपने मस्तक के बीच स्वयं के दिव्य तेजोमय स्वरूप को देखें। अपनी चमकते हुए दिव्य ज्योति स्वरूप को देखें। और स्वयं से कहें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध प्रकाश का पुंज हूं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। आज से मुझे एक दिव्य समझ, एक दिव्य स्मृति मिल रही है। कि मैं आत्मा परमात्मा की छत्र छाया में हूं। आज के दिन परमात्मा पिता की जैसे मुझ आत्मा पर कृपा बरस रही है, जिन्हें हमने जन्म जन्मांतर ढूंढा, जिसको पाने के लिए अनेक प्रकार के जतन किए। आज इस परमात्मा का सत्य परिचय मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहा है। अपने मन से बात करें, हे मेरे मन, परमात्मा के सानिध्य का सुख अनुभव करना है। और उसका सहज साधन है स्वयं की आत्मिक स्मृति। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। I request the technical team to please share the presentation. तो हमने सभी बातें जो उनसे रिलेटेड थी वो कर ली है। अब उनका परिचय उस परमात्मा का, जिसके लिए बहुत सारी महिमा हमने सुनी है, हमने खुद गाई है, लिखी है ना, भक्ति में भी कितना कुछ उसके लिए किया हमने। तो आज हम उस परमात्मा को प्रीवियस लाइफ उनको जानने का, जो हमने पैरामीटर्स देखे थे उनके साथ अलाइन होते हुए उस स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत सुंदर पिक्चर आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उसमें हम देखेंगे जो हमारा पहला ही पैरामीटर था कि परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य है। अब देखिए, भारत में दो मंदिर हैं, बहुत फेमस हैं, शिव मंदिर हैं, लेकिन एक का नाम है गोपेश्वरम, एक का नाम है रामेश्वरम। एक और हमारे यहाँ पर जयपुर में एक मंदिर है, उसका नाम है श्याम सुंदरेश्वर महादेव। तो ये शिव मंदिर है, लेकिन शिव लिंग यहाँ जो दिखाए गए हैं, ये किसका प्रतीक है? उस परम ज्योति का प्रतीक है, जिसे हम इन आंखों से नहीं देख सकते। अगर हमें किसी लाइट को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, कोई मणि जैसा कुछ दिखाते हैं, चमकता हुआ स्टार जैसा कुछ दिखाते हैं लाइट को, लेकिन मुझे उस लाइट के साथ में कुछ रिश्ता भी बनाना है, उनको प्लीज भी करना है, उनकी वर्शिप भी करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई लिंगम बनाएंगे। इससे देखिए, शिव लिंग के आगे क्या शब्द लगता है, शिव ज्योतिर्लिंगम, ज्योतिर्लिंगम, ज्योति का प्रतीक के रूप में हम शिवलिंग की पूजा करते आए हैं। और हम देखें तो गोपाल के भी ईश्वर शिव दिखाए हैं और राम के भी ईश्वर शिव दिखाए हैं। शिव माना निराकार ज्योति स्वरूप। हम देखें तो गुरु नानक ने भी ऊपर की तरफ इशारा करके कहा एको ओंकार, परमात्मा एक निराकार है। जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो हमेशा कहते थे आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। ही नेवर सेड आई एम गॉड। काबा का पत्थर जो है, वहां पर लोग हज पर जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह नूर है, नूर इलाही कहा जाता है। नूर इलाही का अर्थ होता है प्रकाश ही मेरा भगवान है। फिर देखेंगे तो गौतम बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे, इनको भी एनलाइटनमेंट हुआ, इन्होंने भी किसी को याद किया, किसी से इन्हें शक्ति मिली, वो दिव्य शक्ति प्रकाश के रूप में अनुभव हुई। साईं बाबा ने ऊपर की तरफ इशारा करके कहा सबका मालिक एक है। तो हम देखेंगे कि सारे धर्मों में, संपूर्ण विश्व की अलग अलग दिशाओं में, उस एक निराकार को, परमात्मा के ज्योति स्वरूप को स्वीकार किया गया है। और खास भारत में हम उस ज्योति स्वरूप को शिवलिंग के रूप में मानते आए हैं। आप देखिए, जितने भी बाकी देवी देवताएं दिखाए हैं, सब एक मनुष्य रूप में दिखाए हैं, ना देवात्माओं के रूप में दिखाए हैं, पर जो परमात्मा है, शिव की महिमा में भी कहते हैं शिव परमात्मा ही नम है, तो वो परमात्मा किस स्वरूप में दिखाए हैं, ज्योति स्वरूप। और उसको सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ज्योतिर्लिंगम के फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड। तो परमात्मा के बारे में हम जानते हैं कि परमात्मा निराकार है, शेपलेस, मतलब कौन सा शेप नहीं है, ऐसे तो ज्योति स्वरूप है, हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा बिंदी है ना, लेकिन कौन सा स्वरूप नहीं है उनको, कौन सा शेप नहीं है। जैसा हमें ये फिजिकल शरीर का शेप है ना, दो आंखें, दो कान, नाक, मुंह, दो हाथ, दो पैर, ऐसा शरीर नहीं है उनको, वो ज्योति स्वरूप है। अब एक मान्यता परमात्मा के लिए ये भी है कि वो नाम रूप से न्यारे हैं, ना उनका नाम है ना कोई रूप है। अब देखिए, हवा है, हवा में दिखाई दी क्या कभी, कभी नहीं दिखाई दी ना, फिर भी नाम है ना, आकाश है तो भी नाम है ना आकाश, है ना। तो कहने का भाव है कि परमात्मा ऐसा नहीं है कि नाम रूप से न्यारो, ये नाम हो गया ना, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा, ये नाम हो गए ना उनके, निराकार है, ज्योति स्वरूप के। अब कोई सोचते हैं परमात्मा ना, परमात्मा बड़े हैं, भगवान है, तो शायद वो कोई बड़ी लाइट होगी और आत्मा छोटी लाइट होगी, ऐसा नहीं है। आत्मा और परमात्मा अगर हम ज्योति देखें तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन किस में डिफरेंस है, गुणों और शक्तियों में डिफरेंस है। हम आत्माएं कभी पुण्य आत्मा भी होती हैं तो कभी हम पाप आत्मा भी बन जाते हैं, है ना, कभी हम धर्म आत्मा भी बनते हैं तो कभी अधर्मी भी बन जाते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए कभी भी ये शब्द यूज ही नहीं होते हैं। उनकी महिमा में तो हमेशा ही कहा जाता है वो कौन है, वो कौन है, वो शांति के सागर है, वो प्रेम के सागर है, वो आनंद के सागर है, वो सर्व गुणों और शक्तियों के भंडार है। तो आत्मा और परमात्मा की क्वालिटीज में डिफरेंट है। हम आत्माएं तो आज प्योर है, कल इम्प्योर हो जाएंगी, लेकिन परमात्मा परम है, उसकी क्वालिटीज कम ज्यादा नहीं होती, जो है वो है ही है। और हम कितना भी मेहनत करें अपने ऊपर, कितना भी तपस्या करें, हम उनकी क्वालिटीज, हमारा एक लिमिटेड, आत्माओं की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है, वहां तक जा सकती है ना, लेकिन परमात्मा बन जाए हम, वो नहीं हो सकता है। तो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। फिर परमात्मा के जितने भी नाम है, शिव के भी अगर हम नाम देखें तो वो सभी किस रूप में दिखाए हैं, वो नाम गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है, जिनसे उनका गुण दिखाई देता है, जिनसे उनका कर्तव्य नजर आता है। अब देखिए इस दुनिया में तो कलयुग में क्या हो सकता है, किसी का नाम हो अमीर चंद और स्थिति कौन सी होगी, कौन सी स्थिति दिखाई दे रही है, मैच हो रहा है कि गुणवाचक नाम लग रहा है कर्तव्यवाचक लग रहा है। किसी का नाम होता है शांति देवी और घर में सारा दिन क्या हो रहा है, घर में सारा दिन क्या हो रहा है, घर में अशांति मची हुई है। लेकिन परमात्मा का जो नाम है शिव, उसको भी पूरा नाम कहेंगे सदा शिव, और इसका जो डिक्शनरी मीनिंग होता है वो होता है सदा कल्याणकारी, ऑलवेज बेनिफेक्टर। अब देखिए जितने भी नाम है शिव के वो सभी नाम गुणवाचक या कर्तव्यवाचक है। जैसे एक नाम है बबूल नाथ, तो बबूल वो कोई पेड़ का, जो बबूल का पेड़ है उसके नाथ नहीं है, लेकिन हम आत्माएं जो बबूल की जैसी बन जाती है, हम आत्माएं जो मनुष्यों को दुख देती है, कांटे जैसी बन जाती है, हमारी वाणी से दुख मिलता है, हमारे कर्मों से हम किसी को दुख देते हैं, तो हम आत्माएं जब कांटों जैसी बन जाती हैं तो वो परमात्मा आकर के हमें ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, जिससे हम फिर से ट्रांसफॉर्म होते हैं, फूलों जैसा बनते हैं, तो उसका नाम है बबूल नाथ। नेक्स्ट, तो शिव को हम क्यों परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि एक शिव ही है जिसको निराकार के रूप में दिखाया गया है, जिसको लाइट के फॉर्म में दिखाया है, बाकी तो देखिए सभी मूर्तियों के रूप में दिखाए गए हैं, सभी देवात्माओं के रूप में दिखाए गए हैं। शिव उस लाइट का सिंबल है, प्रकाश का सिंबल है, उस नूरे इलाही का सिंबल है, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते थे, तो लेकिन उसको याद करना कितना डिफिकल्ट है ना, मैं किसी को देख नहीं सकती हूँ, है भी पॉइंट ऑफ लाइट, तो हमने क्या किया। और इसकी भी एक सुंदर हिस्ट्री है कि कब ये शिव मंदिर बनना शुरू हुए थे। एक बार सोमनाथ जाना हुआ था, तो वहां पर जो वो दिखाने वाले गाइड थे, तो उन्होंने बताया कि वहां जो शिवलिंग थे ना, पहला जो शिवलिंग था, कहते सबसे प्राचीन मंदिर सोमनाथ का मंदिर है, और वहां पर जो असली शिवलिंग था, तो ये बताया उन्होंने कि वो जो असली शिवलिंग है वो हीरे का था, और वो उसके ऊपर तो कितने बार अटैक हुआ है, सोमनाथ मंदिर को कहते 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा, और ऊंट भर भर के वो वहां से हीरे जवाहरात लेकर के गया। तो ऐसा सुनने में आया कि वो जो शिवलिंग था ना, वो जो हीरे का शिवलिंग था, वो पॉइंट ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका शिवलिंग बनाया था, हीरे का, पर क्योंकि वो हीरे का था तो उस पे बहुत अटैक हुए और वो तो उस समय पर खत्म हो गया, वो गिर गया और फिर उसको उसको तोड़ा गया और फिर लोग ले गए। लेकिन उसके बाद जो आज मंदिर है वो तो कहते हैं सारा रिनोवेटेड है, पर स्थान तो वही है पर रिनोवेटेड है। ये बात इसलिए बताई कि परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उनको किस फॉर्म में दिखाया गया, फिर उनको याद करने के लिए हमने शिव ज्योतिर्लिंगम बना। इसलिए आप देखिए किसी भी देवी देवता के आगे ज्योति शब्द नहीं बनता है, लिंग का अर्थ होता है लिंगाकार निराकार स्वरूप, तो शिव ज्योतिर्लिंगम। इसलिए हम ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि परमात्मा निराकार है और उनको हमने इतने समय से ज्योतिर्लिंगम के रूप में याद किया। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वो कहाँ रहते हैं, वो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं परम धाम में, हमने देखा ना पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। और देखिए बहुत सुंदर स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि जो डीटीज है, देवी देवताएं हैं, उनकी जो वर्शिप है वो रीजनल होती है। बहुत सी बार बंगाल की तरफ जाएंगे तो काली की पूजा होगी, कहते हैं जय काली कलकत्ते वाली, अभी दिवाली आएगी, रीजनल और ओकेजनल होती है। दिवाली आएगी तो सब लक्ष्मी की पूजा करेंगे, महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो गणपति बप्पा मोरिया, यूपी की तरफ जाएंगे तो राम की पूजा, कहीं कृष्ण की पूजा, साउथ में जाएंगे तो कुछ और, तो रीजनल है। लेकिन अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड कि शिव की पूजा, आप देखिए संपूर्ण भारत वर्ष में ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंगम है उसके रूप में पूरे भारत वर्ष में शिव की पूजा हो रही है। ऐसा कोई स्टेट, ऐसा कोई गांव नहीं होगा, हम सब जहां भी रहते हैं हमने जरूर शिव मंदिर देखे होंगे। शिव मंदिर पर्वत पर भी है तो शिव मंदिर शहर के बीच भी है, शिव मंदिर शहर के बाहर भी है। और देखिए एक बहुत ब्यूटीफुल चीज और है, इतने सारे नाम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमको, हम देखेंगे जितने भी शिव मंदिर है क्या क्या रेफरेंसेस है जो हमें बताते हैं कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है और हम सब उन्हें बहुत समय से शिव के रूप में पूजते आए हैं, मानते आए हैं। आप देखिए जितने भी शिव के नाम है ना, उनके आगे या तो स्वामी या नाथ या ईश्वर शब्द लगा हुआ है। क्या लगा है? आप देखिए केदारनाथ, वैद्यनाथ है ना, जगन्नाथ, ये सोमनाथ, नागनाथ, ये सारे नाम नाथ लगे हुए हैं। शिव के नाम के आगे लगे हैं ईश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, और शिव के नाम के आगे कई जगह पर स्वामी भी लगा हुआ है, मल्लिकार्जुन स्वामी। तो कहने का भाव है जो सर्वोच्च है, जो सबका नाथ है, शिव के लिए ही कहते हैं देवों के देव महादेव। बाकी तो सब देवताएं हैं, उन सभी देवी देवताओं के भी जो हेड है, देव है, पूजनीय है, वो कौन है? महादेव। आप देखिए शिव के लिए ही कहते हैं शिव भोला नाथ, शिव भोला भंडारी, और कई बार ये शब्द कहते हैं शिव भोले बाबा। और शिव के लिए ये भी कहते हैं कि शिव शिवरात्रि, आपने से बहुत सारे भाई बहनों ने शिवरात्रि कई बार मनाई होगी। हम क्या लेकर जाते हैं उस दिन शिव मंदिर में, क्या चढ़ाते हैं हम शिव मंदिर में, क्या लेकर जाते हैं? हम शिव मंदिर में जाते हैं तो हम ले जाते हैं आंकड़े, धतूरे, बैंगन, है ना, यही दिखाया गया है ना, यही ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पसंद है इनमें से, ये इसलिए ले जाते हैं कि ये सिंबॉलिक है, इसका कोई वो नहीं है कि उनको आंकड़े और धतूरे या ये सब खराब चीजें पसंद है। ये सिंबॉलिक है कि परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो हम सभी आत्माओं के जो विषय विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो जहर के समान है, जो हमारे जीवन में गड़बड़ कर रहे हैं, हमें चढ़ाने तो वो थे लेकिन हमने उनकी जगह क्या चढ़ा दिया, हमने उनकी जगह उसको रिप्रेजेंट करने वाले फल फूल चढ़ा दिए। तो परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, और परमात्मा और देवताएं अलग है। देवी देवताएं जितने भी हैं भारत में, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, तो ये 33 करोड़ भी कौन है, ये सभी देवी देवताएं हैं, लेकिन परमात्मा इनके भी ऊपर है। भगवान परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वो अलग है, वो सर्वशक्तिवान है, वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश का पुंज है, वो परम धाम में रहते हैं। और रेफरेंस के लिए हमने देखा भारत में हम उन्हें शिव के नाम से याद करते आए, उनका पूजन गायन करते आए। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने इतनी सारी चीजें अभी परमात्मा के परिचय में देखी। परमात्मा, ये हम बात कर चुके हैं कि भारत में चहु दिशाओं में शिव की पूजा होती है, कहीं ईश्वर के नाम से, कहीं भोलेनाथ, बबूलनाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, पापकटेश्वर, इस तरह के अलग अलग नामों से हम उनको याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक बहुत सुंदर स्टोरी यहाँ पर आती है कि हम क्यों परमात्मा के बारे में जाने, हम क्यों जाने भगवान के बारे में। जिंदगी तो बहुत बढ़िया चल ही रही है ना, आपको क्या लगता है, जानना, इतना सब कुछ जाना, तो इसके पीछे कोई कारण था, जानने से कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा इसलिए जाना, या ठीक है दीदी सुना रही हैं तो सुन लो, क्या फर्क पड़ता है, अब हमने कोर्स ज्वाइन कर ही लिया है, जो कहेंगे वही सही है, क्या विचार है? इस बात को जानने से, जैसे हमने आत्मा के बारे में जाना, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में जाना, तो कुछ मिला होगा जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, और अब हम परमात्मा के बारे में इतना जान रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, इतना टाइम और एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं, तो क्या कुछ डिफरेंस आने वाला है हमारे लाइफ में और हमारे थॉट्स में, इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं, या सिर्फ इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स इसलिए कर रहे हैं? रंजिता जी लिखते हैं, सत्य जानने से अंधकार मिटेगा, और बाकी सबका क्या विचार है? सुविधा जी लिखते हैं, हाँ, और बाकी सब कहाँ है आज? सब धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं आज, बाकी सभी लोग कहाँ हैं? या मुझे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आज। ओके, और चेंज तो होता है जब हम सत्य को जानते हैं। नॉलेज विल टेक यू टू द गॉड। ओके, वेरी गुड, अभी सब एक्टिवेट हो गए, अब जल्दी जल्दी आ रहे हैं रिस्पॉन्स। तो हमने क्यों जाना है परमात्मा के बारे में, क्योंकि जितना हम अच्छे से उनको जानेंगे, अब आप देखिए हम किसी को भी जितना अच्छे से जानते हैं उतना ज्यादा हम उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, है ना, उतना ज्यादा उनसे प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही हम आज परमात्मा के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं कि वो निराकार है, वो सर्वशक्तिवान है, वो परम धाम में रहते हैं, वो ज्योति स्वरूप है। भक्ति में हमने ही उन्हें शिव के रूप में याद किया, उनपे कई लोटे जल के चढ़ाए हैं, आज हमें उनका परिचय मिल रहा है कि वही हमारे माता पिता है। एक स्टोरी यहाँ पर आती है बहुत सुंदर। एक बार देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बार एक बेगर था, एक भिखारी था, वो राजा के पास जाता है, कहता है, हे राजन, मैंने सुना है आप तो बहुत दानी हो, महादानी हो, आप मेरी झोली ना वरदानों से भर दो। मुझे आज वरदानों से और किससे जो भी कुछ है आपके पास में, लग्जरीज या जो भी कुछ आप मुझे धन दान देना चाहते हैं दीजिए। तो वो राजा जो होता है ना, वो बहुत जल्दी आ जाता है सुबह सुबह ना भिखारी। तो वो राजा कहता है, अच्छा रुको मैं आता हूँ, अभी मैं गुरु जी के पास नहीं गया हूँ, मैं एक बार उनसे मिलकर आता हूँ। तो वो जो भिखारी था ना, वो बहुत थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसको लगता है गुरु जी के पास जा रहे हैं मेरे को देने से पहले। तो उसने द्वारपालों से पूछा कि अच्छा मैं चला जाऊं क्या, देख लूं एक बार, ये गुरु जी के पास जाएंगे तो मैं भी देख लूं गुरु जी को। तो द्वारपाल कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन पीछे से देखना, ऐसे नहीं कि सबको पता चल जाए। तो फिर क्या हुआ, वो जाता है वहां पर, वो जाता है तो वो देखता है, वो राजन गुरु जी को कहता है, हे गुरुदेव मेरी झोली भर दो, और ऐसी शक्ति भरो, ऐसा बल भरो कि मेरे द्वार पर जो भी आए ना, मैं सबको भरपूर कर दूं। तो फिर वो देखता है, अरे ये क्या हुआ, ये तो खुद ही राजा, तो खुद ही किससे लेकर आया, ये तो खुद ही मेरी जगह पर है, ये तो खुद ही गुरु जी से लाया। फिर वो देखता है कि अच्छा अभी गुरु जी क्या कर रहे हैं। फिर वो देखता है गुरु जी तो हनुमान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनके उनको याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। वो कहता है, अच्छा मैं गुरु जी से क्यों लूं, मैं तो जाके हनुमान जी से लूंगा, अगर गुरु जी से लूंगा तो गुरु जी भी अपना हिस्सा रखेंगे, राजा से लूंगा तो राजा भी अपना हिस्सा रखेगा, मैं डायरेक्ट हनुमान जी के पास जाता हूँ। फिर वो हनुमान जी के पास जाता है तो देखता है हनुमान जी तो कहाँ व्यस्त होंगे, है ना, उन हनुमान जी तो श्री राम की आराधना कर रहे होते हैं। तो उसको थॉट चलता है, अच्छा अब श्री राम से ये लेंगे फिर ये अपना हिस्सा रख लेंगे, मैं तो श्री राम से ही लूंगा डायरेक्ट जा करके। और जब वो श्री राम के पास जाते हैं तो देखते हैं श्री राम तो खुद ही परमात्मा के ज्योति स्वरूप शिव ज्योतिर्लिंगम की आराधना और उन्हीं के साथ उन्हीं के सानिध्य का अनुभव कर रहे होते हैं। तो उसको लगता है कि क्यों नहीं मैं डायरेक्ट शिव जी से ही ले लूं, वाया 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 कितना लॉस होता है ना। आप देखिए शिव जी से राम जी को मिला 100, फिर नीचे ट्रांसफर हुआ होगा 90, फिर ट्रांसफर हुआ 80, तो लास्ट में जब मुझे मिला तो कितना कम मिला, और मैं डायरेक्ट ही कनेक्शन अपना उनके साथ जोड़ लूं तो बेनिफिशियल डील कौन सी होगी, पहले वाली जब वो राजा से लेने गया था, या लास्ट वाली कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उससे लेनी, फर्स्ट और लास्ट कौन सी डील बेनिफिशियल है, हमें ये चांस मिलता हम कौन सी लेने वाले थे, क्या विचार है, हम कौन सी लेने वाले थे, लास्ट वाली डील, लास्ट वाली थोड़ी मेहनत नहीं लास्ट वाली में, हमको भी तो फिर उतनी करनी पड़ेगी ना मेहनत जितनी श्री राम जी ने करी। तो डायरेक्ट लेना चाहते ना हम, वाया वाया में तो कट जाता है ना, किसी से लिया फिर उससे लिया फिर उससे लिया, तो कितना सा मिलता है हमको, है ना। तो हमको कौन सा लेना पड़ेगा, हमको लास्ट वाली डील इज मोर बेनिफिशियल, एंड दिस मेडिटेशन इज टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। हमने क्यों जाना उनके बारे में इतना सारा, क्योंकि आज तक हम यही सारे स्टेप्स तो करते आए ना, कभी ये किया कभी वो किया कभी वो किया कभी वो किया, कभी इनसे लाए कभी उनसे लाए कभी उनसे लाए, लेकिन जितनी हमारी प्यास थी ना वो बुझी नहीं। इधर से ले आए चलो ठीक है थोड़े दिन निकल गए, फिर उधर से लाए फिर थोड़े दिन निकल गए, फिर आज उनके तीसरे के पास जाना था फिर थोड़े दिन निकल गए, लेकिन जो अंदर की हमारी प्यास थी सुख की शांति की प्रेम की शक्ति की, वो प्यास तो हमारी अभी भी बाकी ही रह गई। इसीलिए परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है और ये राजयोग सिखाना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हमने परमात्मा के दिव्य सत्य स्वरूप को जाना कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, वो परम धाम में रहते हैं और इस सृष्टि पर आकर के अपना पार्ट प्ले करते हैं। अब ये सब हम देख चुके हैं कि कैसे अलग अलग जगह रेफरेंसेस है, कई जगह लिखा है मोसेस ने जलती हुई झाड़ियों में ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार किया, पारसी लोग फायर टेम्पल में पूजा करते हैं, फायर को रखते हैं टेम्पल में, तो नूरे इलाही सबका मालिक, वेटिकन सिटी में भी जो चर्च है वहां पर भी ज्योति दिखाई गई है, गुरु नानक ने भी ऊपर की तरफ इशारा करके कहा मतलब हर एक धर्म ने उस स्वरूप को स्वीकार किया है। अब देखिए ज्योति के तो कोई पेरेंट्स नहीं हो सकते ना, जो दूसरी पैरामीटर था इज द हाईएस्ट, अब ज्योति स्वरूप के कौन पेरेंट होंगे। इसलिए आप देखिए शिव, नेक्स्ट स्लाइड, शिव के लिए कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात अपनी ही शक्ति से अवतरित होते हैं, उनको किसी ने जन्म नहीं दिया, माता के गर्भ से उनका ऑर्डिनरी बर्थ नहीं होता है, वो प्रकृति को अधीन करके परकाया प्रवेश करते हैं। ये बात आपको आगे आने वाले सेशंस में और क्लियर होगी। अब परमात्मा के लिए कहीं लिखा गया है, ये जिब्राइल, मैकाल और इसराफिल नाम के एंजल्स कहीं दिखाए हैं, अगर हिंदुइज्म में देखें तो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए गए हैं, कहीं सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है कि जो सत्य है वही शिव है, और शिव है वो शिव ही कल्याणकारी है, और जो वही सुंदर है, ज्योति स्वरूप है परमात्मा के। जो शिव के आप देखिए जो भी ज्योतिर्लिंगम है वहां पर तीन लाइंस दिखाई जाती है, तीन पत्ते वाला बीर पत्र चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिमूर्ति हैं, त्रिमूर्ति के भी रचयिता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो परमात्मा का तीसरा पैरामीटर जो था सर्वज्ञ, फिर सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत है, स्वरूप में तो एटम से भी छोटे हैं, अणु से भी सूक्ष्म, लेकिन सर्वशक्तिवान, उसके लिए हम कहते हैं गॉड इज ओमनी पोटेंट, ऑल माइटी अथॉरिटी, ये कहते हैं ना उसकी महिमा में। तो अभी हम सबको परमात्मा का सत्य परिचय मिल गया कि आखिर भी भगवान कौन है, आखिर भी परमात्मा कौन है, मिला कि नहीं मिला। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने ये पांच बातें अब परमात्मा के बारे में जान ली है कि परमात्मा का नाम है शिव बाबा, जिसको हम बाबा कहते हैं प्यार से। जैसे घर में देखिए बच्चा हो छोटा, वो अपने फादर को बार बार ये बोले, उनके नाम से बोले या उनकी पोजीशन से बोले, अच्छा लगेगा भाई? कोई सीएम का बच्चा बार बार बोले सीएम सीएम सीएम, अच्छा नहीं लगेगा ना, या उनके नाम से बोले अच्छा नहीं लगेगा ना। एक रिश्ता देना पड़ता है, एक रिश्ते को नाम देना पड़ता है, तो बच्चा बोलता है पापा मम्मी दादा दादी। ऐसे ही शिव बाबा से हमारा इतना गहरा रिश्ता है, तो हमें भी तो कोई नाम देना पड़ेगा ना उसको। इवन भक्ति में भी कहते हैं शिव बाबा, तो हम यहाँ पर भी शिव को कहते हैं शिव बाबा, क्योंकि बार बार परमात्मा परमात्मा बोलना कितना डिफिकल्ट हो रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं उनको प्यार से, शिव बाबा। आप सब जहां भी बैठे हैं ना, वहीं पर दिल से एक बार बोल के देखिए, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, मैं आपका बच्चा हूँ। बार बार इसी बात को वो करिए, चिंतन करिए, बार बार बोलिए ये बात, और वो सच में अनुभव होगा, जो आज तक एक इतनी दूरी बनी हुई थी ना कि तुम स्वामी हम तुम्हारे चरणों की धूल, हम कहाँ वो और आप कहाँ, हम तो आपके चरणों की धूल है, हम तो आपके लायक ही नहीं है, वो एक दूरियां बनी हुई थी, डिस्टेंस बना हुआ था, पर अभी हमको समझ आता है परमात्मा शिव बाबा तो मेरे मातृ पिता है, तो इतनी दूरी क्यों। कोई बच्चा आज कहीं बहुत समय से खो गया, आज उसको रियलाइज होता है कि मेरे फादर तो ये प्रेसिडेंट है ना, ये मेरे फादर है, आज वो फिर प्रेसिडेंट वाले रिलेशन से मिलता है, या आज वो, और बहुत समय से वो शायद उसी ऑफिस में काम करता था, प्रेसिडेंट ऑफिस में, लेकिन आज उसको ये पता चलता है कि मैं बचपन में खो गया था और यही मेरे फादर है, तो उसका बिहेवियर और बोलने का स्टाइल चेंज होता है, या वो वैसे ही तरीके से रिएक्ट करता है, बताइए। आज हम सबको भी क्योंकि वो ही करना है, क्या विचार है? हमें भी बहुत समय से, जन्मों से हम इस बात को भूले हुए थे कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा मुझ आत्मा के मात पिता है। आज हमें ये रियलाइज हुआ है, अभी भी हम शिव बाबा से इतना दूर दूर से बात करेंगे, या अब तो हम उनको बोलेंगे शिव बाबा बस बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हो गई है, अब आप और मैं, अब मेरी सारी जीवन की बातें आपके साथ शेयर होगी, अब आप मुझे जो गाइड करेंगे मैं वैसे करूंगा, क्योंकि अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि आप मेरे माता पिता हैं। तो चेंज होता है ना, तो हमको भी अब उस चेंज के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, और उस चेंज के प्रोसेस को आगे हम कल के सेशन में और जानेंगे कि राजयोग में कैसे हम परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ कनेक्ट करें। प्रीवियस स्लाइड। तो हमने उनका नाम देखा, नाम क्या है, सदाशिव, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा, कहीं जेहोवा, कहीं गॉड, कहीं अल्लाह, कहीं वाहेगुरु, लेकिन अब हम सब क्या कहेंगे उनको प्यार से, हम सब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब आना चाहिए, इतनी देर नहीं लगानी। अब हम सबके लिए कौन है वो, हम सबके लिए कौन है वो, शिव बाबा है, हमारे माता पिता है, और बस एक का ही जवाब आया, जल्दी से आना चाहिए जवाब, शिव बाबा है, शिव बाबा है। और अब हमको उनको इसी नाम से याद करना है, इसी नाम से पुकारना, और वो जल्दी सुनेंगे, है ना। जिसका जो नाम होता है और जिसका जो वो होता है ना वर्क, उसको उसी नाम से बुलाते हैं तो वो जल्दी सुनते हैं, है ना। और क्यों अब इजी हो गया हमारा ये कनेक्शन, क्योंकि अब हमने क्या किया, अब हमें ये समझ आया शिव बाबा के ऊपर तो वो प्लास्टिक रबर जैसा कोई भी इंसुलेशन नहीं है, ये जो इंसुलेशन है ना इस रबर पे, ये सिर्फ हमारे ऊपर ही है, उनके ऊपर तो कोई भी इंसुलेशन नहीं है। लेकिन अब कनेक्ट करना है तो बार बार हमें ही सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस होंगे उधर से शक्ति मिलेगी और सर्किट पूरा होगा, आत्मा चार्ज होगी, है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसीलिए जो हमने दो तीन दिन से बार बार प्रैक्टिस की ना, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये इसीलिए की थी क्योंकि जब हमें कनेक्ट करना होगा, हमने पहले इंसुलेशन को हल्का किया हुआ है, अब कनेक्ट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। परमात्मा का पहचान क्या है, स्वरूप क्या है उनका, लाइट निराकार ज्योति स्वरूप। और उनकी महिमा में हमने उनकी पांच क्वालिफिकेशंस भी जानी, पांच पैरामीटर्स भी देखे थे, वो परम धाम में रहते हैं और उनका कर्तव्य क्या है। वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। और परमात्मा का क्या कर्तव्य है, क्या वो मेरे को जो एक प्रॉब्लम है ना, मेरा ये एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ है शरीर में, उसको ठीक करेंगे आकर के, हाँ, या मुझे मेरा लोन पास नहीं हो रहा है, मुझे नया मकान बनाना है, ये सब करेंगे परमात्मा आकर के, या क्या करेंगे वो आकर के। वो क्या करते हैं, उनका कर्तव्य है जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानी और अधर्म होगा, तब तब मैं सृष्टि पर आऊंगा, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। सिर्फ एक दो लोगों के जीवन में सुख शांति देने के लिए नहीं आएगा परमात्मा इस समय। और एक गुड न्यूज सबके साथ ये भी हम शेयर करेंगे कि परमात्मा ये जितना भी सारा ज्ञान 1, 2, 3, 4 चार दिनों में हमने जो सुना है और आगे आने वाले दिनों में सुनेंगे, ये सारा ज्ञान किसी दीदी का या किसी दादी का उनका नहीं है, ये सारा ज्ञान परमात्मा निराकार शिव सृष्टि पर जब आए तब उन्होंने ये जो ज्ञान उनके मुख से निकला, उन्होंने जिस भी मीडियम के थ्रू ये ज्ञान सुनाया वो हम आगे के सेशंस में जानेंगे, पर ये सारा ज्ञान परमात्मा ने ही, शिव बाबा ने स्वयं ही दिया है। अगर ये ज्ञान मनुष्य के पास होता तो इतना समय क्यों लगता आने में, तो ये ज्ञान शिव बाबा का ही, और उनका कर्तव्य है नई दुनिया की स्थापना करना, सतयुग की स्थापना करना, सत्य धर्म की स्थापना करना। तो आगे हम टाइम साइकिल जब समझेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे वो इस कार्य को, इस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। तो आज हमने परमात्मा के सत्य परिचय को जाना, अब तो जान लिया ना। आप देखो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी और है, अब उनके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं, जिस रिश्ते की जीवन में कमी हो ना। एक बार एक माता ने हमें अनुभव सुनाया, उनकी उनकी मदर ने शरीर छोड़ दिया, उनको बहुत लगता था कि मेरी माँ उनको बहुत याद आती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि शिव बाबा के साथ तो मैं कोई भी रिलेशन जोड़ सकती हूँ ना, तो मैं शिव बाबा को ही अपनी मदर बना देता हूँ। तो उन्होंने शिव बाबा को माँ के रूप में याद करना शुरू किया, और धीरे 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 वो जो माँ की याद आती थी बार बार, वो जो दुख होता था, वो बहुत सुंदर प्यारे रिश्ते में बदलता गया, क्योंकि परमात्मा से, शिव बाबा से वो अनुभव होने लगा। तो शिव बाबा की के साथ हम कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हैं। मुख्य तीन रिश्ते तो हमारे हैं ही, कि वो हमारे माता पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारे सतगुरु हैं, फिर हम उन्हें दोस्त भी बना सकते हैं, हम उन्हें अपना जीवन साथी के रूप में भी याद कर सकते हैं, हम उन्हें बड़ा भाई भी बना सकते हैं। और कहीं कहीं भक्ति में भी दृष्टांत दिखाया है कि भगवान को अपने बच्चे के रूप में भी याद करते हैं। कुछ भाई बहनों के क्वेश्चन आ रहा है कि 5 पैरामीटर्स रिपीट करिए। पहला पैरामीटर था, स्लाइड्स कैन बी स्टॉप नाउ, पहला पैरामीटर था एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स, सेकंड वन इज हाईएस्ट, तीसरा था सर्वज्ञ ऑल नोअर, चौथा था सर्वोपरि बियॉन्ड ऑल साइकिल्स, और पांचवा था इनफाइनाइट इन ऑल वैल्यू, सर्व गुणों और शक्तियों में अनंत है। तो अभी सबको क्लियर हो गया परमात्मा का परिचय, वेरी गुड, थैंक यू। अभी हम सभी मेडिटेशन करें या किसी का कोई क्वेश्चन है?
पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं।
जी गुरु।
ओम शांति।
शांति
दीदी, आज के जो प्रश्न आए हैं उसमें से सबसे पहला प्रश्न आया है कि भगवान से कनेक्ट हो गए हैं, ये कैसे पता चलता है?
दो वायर्स कनेक्ट हो जाते हैं, सही कनेक्ट हुए हैं, कैसे पता चलते है? कैसे पता चलते है? दो वायर्स हमने जोड़े थे, दोनों का ऊपर का इंसुलेशन भी हटा दिया, वो कनेक्ट हो गए हैं, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? लाइट जल जाएगी ना, अगर सही कनेक्ट हुए हैं, सर्किट कंप्लीट हो गया है तो लाइट जल जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगा और बल्ब में रोशनी आ जाएगी। ऐसे ही हमें कैसे पता चलेगा हम शिव बाबा के साथ कनेक्ट हो गए हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। नो वन कैन स्टॉप, इवन यू योर सेल्फ कैन नॉट स्टॉप दैट चेंज। जब परमात्मा से शक्ति आएगी तो वो जीवन में ऑटोमेटिकली परिवर्तन लेकर के आएगी। हमारे कई सारे भाई बहनों का अनुभव है, लाखों भाई बहनों का अनुभव है, जब वो 7 दिन ये राजयोग कोर्स करते हैं तो कई लोग सिर्फ कोर्स करते करते और उसके आगे भी जो कंटिन्यू करते 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 ऑटोमेटिकली कईयों का सिगरेट पीना छूट गया, कईयों का शराब छूट गया, कईयों की और कई गलत आदतें थी वो सब ऑटोमेटिकली छूट गई। वो कहते हैं कि हमने जिंदगी में इतने साल इस चीज के लिए एफर्ट्स किए पर सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन ये कोर्स करते करते परमात्मा के साथ जैसे जैसे हम मेडिटेशन में कनेक्ट होने लगेंगे, अंदर लाइट आएगी, शक्ति आएगी, वो सब क्लोज हो जाएगा। जैसे कमरे में लाइट जलाते हैं, अंधेरा भगाना पड़ता है कि किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं? इस समय 7:30 बजने वाले हैं, हर घर में अंधेरा हो चुका है ऑलमोस्ट पूरे भारत में। हम अब यहाँ से उठ के दूसरे रूम में जाएंगे, वहां अंधेरा होगा, अंधेरा हम क्या भगाएंगे या लाइट ऑन करेंगे? क्या करेंगे? लाइट ऑन करेंगे ना, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही हम जब कनेक्ट होना शुरू हो रहे हैं, उनकी पावर आ गई है, चेंज अपने आप आपको रियलाइज होगा।
जी दीदी, दीदी शिव शक्ति के बारे में थोड़ा बताएं, जो भी क्वेश्चन आया है एक शिव शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं।
शिव शक्ति नाम से ही एक बहुत सुंदर बात समझ आती है, वो शिव और उसकी शक्ति। दूसरे रूप में हम देखें तो देवियां जितनी भी है उनको शिव शक्ति के रूप में दिखाया गया है कि शिव की शक्ति। देवियों के सर पर आप देखेंगे तो शिव दिखाते हैं, जो दुर्गा का जो दरबार सजता है वहां पर ऊपर शिव दिखाते कि शिव की शक्तियां, शिव की अर्धांगिनी बताया गया है। तो परमात्मा वो निराकार है, जब हम आत्माएं, यहाँ शक्ति है आत्मा के लिए शब्द यूज किया गया है, जब हम आत्माएं उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो जीवन में शक्ति आती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है। और भी इसके बहुत सारे और भी डीप रेफरेंसेस हैं, वो मुझे लगता है जैसे जैसे हम और क्लासेस करते जाएंगे वो भी क्लियर होता जाएगा।
जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान से दिल का स्नेह कैसे होगा जबकि वो देखते नहीं सुनते नहीं?
भगवान से दिल का स्नेह कैसे होगा जबकि वो दिखते नहीं है सुनते नहीं है? वो दिखते नहीं है ये बात तो ठीक है, लेकिन सुनते तो हैं, सुनते तो हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, सुनते तो हैं। और सुनते नहीं होते ना तो हम इतनी आवाजें लगाते भी नहीं उनको जितनी हमने भक्ति में लगा ली है। और अभी भी रोज कहते ही है ना, किसी के कोई बूढ़ी माता जी होती है ना, उनके घुटने में भी दर्द होता है ना, तो उठते बैठते कहती है हे भगवान तू ही पार लगा दे, हे भगवान तू ही कुछ कर दे। कोई कुछ करता है तब तो उसको याद करते हैं ना बार बार, वो अपने उन बेटों को तो याद नहीं कर लेती है बार बार जो कि कुछ नहीं करते। कई बार ऐसा होता है ना, फैमिली मेंबर्स भी कुछ नहीं करते तो उनका तो नाम नहीं आता है। सुनता तो है और दिखाई तो नहीं देता ये बात तो ठीक है, पर अनुभव जरूर कराता है। जैसे ठंडी हवा आती है, अभी खिड़की खुल जाए तो जो हवा आने लगी है थोड़ी थोड़ी ठंड है उसमें, है ना, तो जैसे ही खिड़की खुलेगी तो वो जो ठंडी हवा आएगी ना हमें पता चल जाएगा कि बाहर ठंड हो गई है ना। ऐसे ही जब हम शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल क्लासेस को आगे आगे सुनते जाएंगे, हमें अनुभव भी होगा और दिखाई तो इन आंखों से तो नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी इन आंखों की तो रेंज बहुत थोड़ी सी है, बहुत लिमिटेड है, लेकिन हम उसको अनुभव भी कर पाएंगे और हमारी बात वो सुनेंगे भी। और उनकी जो रेगुलर हम क्लासेस सुनेंगे, हमने कहा ना परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, उन्होंने ये सारा ज्ञान दिया है, तो जब उनका और ज्ञान आगे आगे सुनते जाएंगे ना, तो हमें ये भी समझ आएगा कि उन्होंने तो मेरी बात सुन ली, मैंने मुंह से भी नहीं बोली थी, सिर्फ अंदर ही अंदर चल रही थी, सुन ली और उसका रिस्पॉन्स भी दिया। ये आप सब बोलने वाले हैं अगले 10-15 दिन बाद, ये आपकी तरफ से ही आने वाला है। पर इसके लिए क्या चाहिए, कुछ समय पेशेंसली हमें इस क्लास को कंटिन्यू रखना है।
जी बिल्कुल, आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न दीजिएगा, कि कई बार टॉपिक से रिलेटेड नहीं भेज रहे हैं जो भाई बहन, उनसे अनुरोध है प्लीज टॉपिक से रिलेटेड ही प्रश्न भेजिए। अदिति एक और प्रश्न है कि घर में सभी हवन पूजा में विश्वास रखते हैं, आपको सुनकर दिल तो परमात्मा को निराकार मानकर याद करूं, पर घर वालों को कैसे समझाएंगे, उनके अनुसार पूजा पाठ करना ही होगा, क्या करें?
पूजा पाठ करने में नुकसान तो कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ी देर उनके साथ करना भी पड़ रहा है तो इससे एनी लॉस क्या नुकसान है, इट्स ए गुड एफर्ट, में कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, हम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और जब तक उनको ये ज्ञान नहीं समझ आए, देखिए ये ज्ञान इट्स वेरी क्लियर, ज्ञान मैंने सुना है, मैंने समझा है, जीवन मेरा परिवर्तन करना है, कभी भी हमको ये नहीं करना है कि ज्ञान मैंने समझ लिया ना, अभी घर के जो चार लोग है ना उनको हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप भी यही ज्ञान सुनो, यही सत्य है। यस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अगर सत्य का परिचय मिला है, हमें कुछ अच्छा अनुभव हुआ है, हम उनको जरूर इंस्पायर करें, पर हम उनको चेंज करने की जिम्मेदारी नहीं लें, हमारी जिम्मेदारी अपने आप का परिवर्तन करने की है। मुझे ज्ञान समझ आया, मुझे शिव बाबा को याद करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, उनको अगर पूजा पाठ हवन करने हैं और वो चाहते हैं हम भी उसमें थोड़ा सा समय दे दें, तो उसको देने में कोई मुझे नहीं लगता कोई नुकसान है, हम कर सकते हैं वो भी।
जी अगला क्वेश्चन है कि मुझसे आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं ही होता है और आंखें खोल के मैं नहीं कर पाती हूँ।
कुछ समय के लिए, इनिशियल कुछ डेज के लिए डेफिनेटली आप आंखें को बंद करके भी कर सकते हैं, पर डोंट मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि राजयोग है ही आंखें खोल कर करने का। कुछ क्षणों के लिए कई बार आंखों में इचिंग हो जाती है, कई बार आंखों कंफर्टेबल नहीं लगता है, कोई हवा में कोई ऐसी खुशबू या कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आंखें कंफर्टेबल फील नहीं करती है, या कुछ भाई बहने जैसा कि ये भी कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता है, नहीं मेडिटेशन होता है, डेफिनेटली हम कुछ दिन के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन हमें धीरे 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 आंखें खोलने की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि राजयोग है ही ओपन आईज मेडिटेशन।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिनके भी क्वेश्चंस हो वो चैट में डाल सकते हैं, जो भी भाई बहन कोई भी क्वेश्चंस हो आप चैट में लिख सकते हैं।
दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजयोगा मेडिटेशन बाकी सभी से अलग कैसे है, थोड़ा सा क्लियर कीजिए।
मोनिका बहन इसका आंसर हम कल दें तो चलेगा, क्योंकि कल हमारा
जी सेशन जी जरूर जरूर, तो आपका जिनका भी ये प्रश्न है इसका आपको कल सेशन के अकॉर्डिंग आंसर मिल जाएगा, तो अगर आज से रिलेटेड है कुछ तो आप भेज सकते हैं। दी आज यही प्रश्न आए थे तो अभी तक तो यही प्रश्न है, और किसी को भेजना है तो वो भेज सकते हैं।
आज एक अनाउंसमेंट भी है कि सभी भाई बहनों को कल के सेशन का क्विज नहीं मिला था, तो कल और आज दोनों के सेशंस का क्विज मिलेगा, और सभी ने अपना होमवर्क जैसे आत्मा वाला किया था वैसे ही अब परमात्मा का चैप्टर हमने कल किया और आज किया, तो जितनी भी बातें हमने सुनी, जितनी समझ आई, जितनी याद है, उनको आज ही और नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले कम से कम एक पेज जरूर लिखना है। ये होमवर्क सभी को करना है। आप सभी को डे 7 पर एक ईमेल आईडी शेयर किया जाएगा, जहां आप अपनी नोटबुक को स्कैन करके एक पीडीएफ बना करके वहां पर भेज सकते हैं। तो आप सबकी नोटबुक्स आप देखी भी जाएगी, और आप उस होमवर्क को जब करेंगे, जिन्होंने आत्मा वाला किया है, मुझे लगता है उन्हें भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आया होगा, यस आई हैव लर्नड एंड आई हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि परमात्मा के बारे में हमने जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, जो कुछ समझ आया, वो सारा हम अनुभव एक पेज में जरूर लिखें। अभी हम सब फिर से कुछ क्षणों के लिए साइलेंस में बैठेंगे। दिल की गहराई से, सच्चे दिल से, प्यार से शिव बाबा का धन्यवाद करें। मन ही मन उनसे कहें, वाह बाबा वाह, आपने मुझे चुनकर अपना ज्ञान दिया, अपना सत्य परिचय दिया। शिव बाबा के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें। जो भी फेवरेट संबंध है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, दोस्त, उसके रूप में उन्हें याद करें। बार बार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। वह मेरा भाग्य वाह, ग्रेटिट्यूड को, इसी शुक्रिया को अब अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। एक क्वेश्चन आया है, मनीषा जी का आया है। एक मिनट, क्वेश्चन है, हिंदू ड्रामा देर आर सो मैनी फ्रॉम देवता, सो होम वी शुड वर्शिप, बिकॉज इन सम धार्मिक सीरियल्स वी हैव सीन दैट समटाइम्स सम फॉर्म ऑफ गॉड गेट्स एंग्री इफ दैट पर्सन डज नॉट वर्शिप दैट गॉड, इज इट सो दैट वी हैव शुड वर्शिप एवरी फॉर्म ऑफ गॉड।
अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी के दिल की बात है कि जैसे होता है ना, आज इनका दिन है, इनको ये, हम ना जब आगे हम कर्म फिलोसफी, जब कर्म सिद्धांत की बात करेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज में, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा।
जी दीदी,
तब तक हम पेशेंस के साथ बने रहें।
जी जरूर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन परमात्मा को जाना और परमात्मा से ज्योति जलाई, और उम्मीद है सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, सबकी बैटरी फुल चार्ज हो रही होगी। तो अपनी आत्म ज्योति को इसी तरह जलाए रखिए, और अगले सेशन में भी हम इसको इसी तरह बनाए रखेंगे, और इसीलिए समय से सभी जुड़े और अच्छी अनुभूति लीजिए, और अपने प्रश्नों के साथ जो सेशन होता है उसी के अनुसार प्रश्न भेजिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, ओम शांति।
Thank you.